फ्लोरिडा में मकान मालिकों को 2008 के आर्थिक मंदी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक बिक्री के चलते अपनी संपत्ति बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस सामूहिक बिक्री के कारण पूरे फ्लोरिडा राज्य में इन्वेंट्री और लिस्टिंग आसमान छू रही है और घरों की कीमतें और किराए दोनों गिर रहे हैं। रेवन ट्रैप के आंकड़ों से पता चलता है कि फ्लोरिडा में अभी करीब 180,000 घर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 2008 में आई मंदी के बाद से यह सबसे ज्यादा इन्वेंट्री है। फ्लोरिडा में घर खरीदने वालों या घर के मालिक के तौर पर आपके लिए एक और अच्छी खबर यह है कि अगले कुछ सालों में प्रॉपर्टी टैक्स कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। गवर्नर रोंडा सैंटिस अब फ्लोरिडा में प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव पेश कर रही हैं। इस पर नवंबर 2026 में मतदान हो सकता है। ये राज्य में एक संवैधानिक संशोधन है जो प्रॉपर्टी टैक्स को निरस्त या बहुत कम कर सकता है, जिससे फ्लोरिडा में घर मालिकों और घर खरीदारों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी और मासिक भुगतान भी कम होगा। और यह कुछ ऐसा है जिसे फ्लोरिडा के ये मकान मालिक बहुत चाहते हैं, क्योंकि इनमें से कई मकान मालिक अभी अपने किराए से पैसे नहीं कमा सकते हैं। जैसे कि मेरे पीछे पेरिश फ्लोरिडा में ये घर है। इसे 2022 में बुलबुले के चरम पर वॉल स्ट्रीट के निवेशक सिल्वन होम्स ने 400,000 में खरीदा था। खैर, जब से उन्होंने इसे खरीदा है उन्हें किराया 2,900 प्रति माह से घटाकर लगभग 2,100 प्रति माह करना पड़ा है। ये लगभग 30% किराए में कटौती है और यह घर लगातार खाली पड़ा हुआ है। अब इस मकान मालिक के लिए समस्या और फ्लोरिडा में इतने सारे मकान मालिक अब इसे क्यों बेच रहे हैं, इसका कारण यह है कि वे वास्तव में इसे 2,175 प्रति माह पर किराए पर देकर पैसे नहीं कमा सकते हैं। अगर वे इसे 2,175 प्रति माह पर किराए पर देते हैं तो ये सकल राजस्व में प्रति वर्ष लगभग 26,000 होगा। अपने खर्चों का भुगतान करने के बाद ये लगभग 16,000 शुद्ध आय होगी और यह उनके कर्ज पर ब्याज घटाने से पहले है। अगर आप कर्ज पर ब्याज जोड़ते हैं तो नकदी प्रवाह में भारी गिरावट आएगी और इसलिए यह इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि क्यों हम पूरे फ्लोरिडा में मकान मालिकों को घर बेचते हुए देख रहे हैं और क्यों बाजार में इन्वेंट्री आसमान छू रही है। और इस बढ़ी हुई इन्वेंट्री के कारण अब पूरे फ्लोरिडा राज्य में कीमतें गिर रही हैं। अगर हम रेवेंचर ऐप पर फ्लोरिडा के उन इलाकों का नक्शा देखें जहां कीमतें सबसे ज्यादा गिर रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूरा नक्शा नीला है, जिसका मतलब है कि पूरे फ्लोरिडा में कमोबेश कीमतें गिर रही हैं। लेकिन कीमतें सबसे ज्यादा निम्नलिखित मेट्रो क्षेत्रों में गिर रही हैं। हम पंटागोर्डा में कीमतों में साल दर साल -8% की गिरावट देख रहे हैं। हम सारेसोटा नॉर्थपोर्ट में साल दर साल -6% की गिरावट देख रहे हैं। हमारे पास केप कोरल में साल दर साल -7-8% की गिरावट है। हमारे पास नेपल्स में साल दर साल -5% की गिरावट है। और सिर्फ एक साल में ये गिरावट काफी गंभीर है, क्योंकि आमतौर पर घरों में मंदी आने में 4-5 साल लगते हैं। तो अगर एक साल में कीमतें 5% या 7% या 8% गिरती हैं, तो उसे 3 या 4 साल से गुना करें और आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये कीमतों में वास्तविक गिरावट है जिसका अनुभव हम पूरे फ्लोरिडा में कर रहे हैं। और मकान मालिकों के अलावा एक बड़ा दोषी बिल्डर भी हैं जो बेच रहे हैं। मैं वास्तव में डॉक्टर हॉटन होम बिल्डिंग समुदाय में हूँ। यह एक ऐसा समुदाय है जहाँ वे पिछले 4-5 सालों से निर्माण कर रहे हैं। यह एक ऐसा दौर था जब उन्होंने महामारी शुरू होने के ठीक बाद घरों को बेच दिया था। हालांकि वहाँ एक नया दौर है जहाँ डॉक्टर हॉटन अब इनमें से कुछ खरीदारों को 3 या 4 साल पहले बेचे गए घरों की तुलना में सस्ते में घर बेच रहे हैं। बस इस घर को देखें, हर कोई। मुझे अभी डॉक्टर हॉटन समुदाय में ये घर मिला है। ये घर अभी बिक्री के लिए उपलब्ध है। ये 4 बेडरूम 3 बाथरूम 2,300 फीट वर्ग का है, जिसकी कीमत $378,000 है, जो कि $168 प्रति फीट है। मेरा मतलब है, इस घर की कीमत प्रतिस्थापन लागत से बहुत कम है। और फिर भी डॉक्टर हॉटन ने उस घर की कीमत इतनी ही रखी है। 3 या 4 साल पहले वे उस घर को 450 ग्रैंड 460 ग्रैंड में बेच रहे थे। अब नए संस्करण के लिए ये 380 ग्रैंड है। और इसलिए बिल्डर वास्तव में फ्लोरिडा में आवास बाजार के मामले में परिदृश्य बदल रहे हैं। अमेरिका के अन्य हिस्सों में, जैसे अगर आप घर बनाने वाले समुदाय से खरीदते हैं तो आपको शुरुआत में अच्छा सौदा मिल सकता है, लेकिन बाद में जब आप उस घर को बेचने जाते हैं तो आपको बिल्डर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन अब एक बड़ी बात जो फ्लोरिडा के आवास बाजार के भविष्य को प्रभावित कर सकती है, वह है संपत्ति करों का क्या होता है। क्या गवर्नर रोंडा सैंटिस वास्तव में संपत्ति करों को खत्म करने के बारे में गंभीर हैं? और अगर ऐसा होता है तो फ्लोरिडा के आवास बाजार पर इसका क्या असर होगा? खैर, हम पाम बीच पोस्ट के इस लेख में डेंटिस के विचारों पर एक नजर डाल सकते हैं। आप जानते हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह आपकी संपत्ति है या नहीं। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि साल दर साल अपनी संपत्ति पर रहने के लिए आपको सरकार को चेक देना होगा। तो आप मूल रूप से अपनी संपत्ति पर रहने के लिए सरकार को किराया दे रहे हैं। इसके बाद डेंटिस ने एक और दिलचस्प बात कही जो मुझे वाकई अच्छी लगी। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि जब तक कोई आपको पैसे नहीं देता, बेचने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक आपको अपने घर की कीमत का सही सही पता नहीं चलता। बाजार ऐसे ही चलता है। आप कह सकते हैं कि इसकी कीमत इतनी है, लेकिन अगर कोई आपको इतनी कीमत देने को तैयार नहीं है तो आपको उस रकम पर टैक्स क्यों देना चाहिए? क्योंकि संपत्ति कर इस तरह से काम करता है कि हर साल स्थानीय कर निर्धारक आपके घर के मूल्य का आंकलन करता है। और फ्लोरिडा के मामले में महामारी के बाद से घरों की कीमत का आकलन आसमान छू गया है। उदाहरण के लिए, अगर हम सेंट पीटर्सबर्ग में बिक्री के लिए एक घर चुनें, तो वह 3 बेडरूम और 3 बाथरूम वाला है जिसकी कीमत 460 ग्रैंड है, और आप देख सकते हैं कि विक्रेताओं को कीमत में लगभग 100,000 की कटौती करनी पड़ी और फिर भी यह नहीं बिक रहा है। पिछले 5 सालों में इस घर का मूल्य 83% बढ़ गया है, और आप देख सकते हैं कि इस अवधि में इसका कर बिल $2,800 प्रति माह से बढ़कर $6,500 प्रति माह हो गया है, और अब मालिक संपत्ति नहीं बेच सकता है और कीमत में कटौती कर रहा है। और इसलिए फ्लोरिडा जैसे बाजार में जहां आवास बहुत अस्थिर है, मैं समझता हूं कि मालिकों की संवेदनशीलता उनके संपत्ति करों में वृद्धि के प्रति होती है, क्योंकि उसके बाद बाजार में सुधार होता है और फिर उनका घर नहीं बिकता है। वे खुद से कह रहे हैं, मैं इतना अधिक संपत्ति कर क्यों चुका रहा हूं, और इसी कारण से मुझे लगता है कि फ्लोरिडा में संपत्ति करों को कम करने पर विचार करना उचित है। हालांकि ऐसा करने का तरीका संपत्ति करों में सार्वभौमिक कटौती या संपत्ति करों को समाप्त करना नहीं है। इसके बजाय किसी भी कटौती का ध्यान वास्तविक घर के मालिकों पर होना चाहिए जो अपने घर को घर में रखते हैं। दरअसल इस मामले में यह उदाहरण जो मैंने अभी आपको दिखाया, यह एक निवेशक है जो इस घर का मालिक है, यह एक मकान मालिक है। वे इसे किराए पर देना चाह रहे थे, वे नहीं दे सके, किराया कम हो गया, अब उन्हें बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें कीमत कम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि संपत्ति कर बढ़ गया है। तो यह वास्तव में एक अच्छा उदाहरण है। आप जानते हैं, एक निवेशक पर उच्च संपत्ति कर उन्हें बेचने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है और बाजार में कीमतें कम कर सकता है और इसे हर किसी के लिए अधिक किफायती बना सकता है। इसलिए इसके बजाय उन मालिकों पर कर राहत पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में अपने घरों में रहते हैं। मैं वास्तव में कुछ ऐसा प्रस्तावित करूंगा जैसे कि अपने घरों में रहने वाले लोगों पर संपत्ति कर की दर को कुछ बड़ी मात्रा में कम करना, शायद 20, 30, 40%, और फिर उन लोगों पर संपत्ति कर की दर को उसी राशि से बढ़ाना जो दूसरे और तीसरे घर और निवेश संपत्तियों के मालिक हैं। अंत में डेंटिस्ट जो प्रस्तावित कर रहे हैं वह फ्लोरिडा के घर मालिकों के लिए $1,000 की संपत्ति कर छूट है, और वह वास्तव में किसी भी प्रकार के संपत्ति कर संशोधन पर मतदान से पहले दिसंबर 2025 तक फ्लोरिडा के घर मालिकों को ये छूट भेजना चाहते हैं। ये प्रत्येक घर के लिए $1,000 के रिबेट चेक होंगे जो उनके प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट के तौर पर होंगे। टेक्सास राज्य ने पिछले साल कुछ ऐसा ही किया था। हालांकि ये फ्लोरिडा हाउसिंग मार्केट को सही होने से नहीं रोकेगा। वास्तव में मुझे लगता है कि हम भविष्य में फ्लोरिडा हाउसिंग मार्केट में सुधार को और भी तेजी से होते हुए देखेंगे, और एक तरीका जिससे आप यहाँ फ्लोरिडा और अमेरिका के अन्य हिस्सों में हर किसी को ये देख सकते हैं वह है मेरे द्वारा यहाँ इस जिप कोड में बनाए गए होम प्राइस को देखना। रेंजर प्राइस स्कोर हमेशा 50 या उससे अधिक पर था और फिर महामारी के उछाल के दौरान 77 तक पहुंच गया। यह एक बड़ा विक्रेता बाजार था, लेकिन फिर 2023 से शुरू होकर हमारा स्कोर गिरकर 44 और फिर 38 हो गया, और अब ये भारी विक्रेता बाजार का संकेत देते हुए 27 है। तो अगर आप 2 साल पहले हमारे रिवेंचर स्कोर को देख रहे होते तो आपने देखा होगा कि इस बाजार में मंदी आनी शुरू हो गई है और आप जान पाते कि कीमतें गिरने वाली हैं, जिससे आपको एक विक्रेता के तौर पर ये तय करने में मदद मिलती कि कब बेचना है, और एक खरीदार के तौर पर आपको और अधिक सतर्क बोली लगाने और भविष्य में कीमतों में गिरावट का इंतजार करने के लिए संकेत मिलता। और यह रिवेंचर स्कोर अमेरिका के हर शहर और जिप कोड के लिए उपलब्ध है। लगभग 30,000 जिप कोड के लिए हमारे पास एक स्कोर है जो भविष्यवाणी करता है कि अगले 12 महीनों में कीमतें कहां जाएंगी। और इस वीडियो में बाद में मैं आपको इस स्कोर का उपयोग करके ये समझने के बारे में और अधिक समझाने जा रहा हूं कि आपके क्षेत्र में कीमतों में सबसे अधिक गिरावट कहां होने की संभावना है। अब मैं आपको फ्लोरिडा के हाउसिंग मार्केट के बारे में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा बताता हूं, और आप लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। फ्लोरिडा में इस समय 177,000 घर बिक्री के लिए हैं। वास्तव में यह अमेरिका के किसी भी राज्य से अब तक की सबसे अधिक संख्या है। दूसरे नंबर पर टेक्सास है जहां करीब 115,000 घर बिक्री के लिए हैं। तो फ्लोरिडा में इन्वेंट्री और सप्लाई के मामले में मार्केट दूसरे नंबर से करीब 40% ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि अभी कितने घर बिक्री के लिए हैं और क्यों यह एक खरीदार मार्केट में तब्दील हो रहा है। असल में कीमतों में अभी काफी गिरावट आ रही है। ये सिर्फ खरीदारों का मार्केट नहीं है, कीमतें पहले से ही गिर रही हैं और इस साल भी गिरती रहेंगी। हालांकि कुछ विक्रेताओं को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। मेरे पीछे इस घर के विक्रेता ने 2023 की शुरुआत में इस घर को करीब 339,000 में खरीदा था और वे इसे 2.5 साल बाद अब 354,000 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वे अभी भी इस घर पर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पिछले 2.5 साल में इन्वेंट्री और सप्लाई में 150%, 200% की बढ़ोतरी हुई है और कीमतों में 5 से 7% की गिरावट आई है। और इसलिए कुछ विक्रेता अभी भी यह समझने में देर कर रहे हैं कि बाजार में क्या चल रहा है, और यही कारण है कि घरों की कीमतों में गिरावट आने में काफी समय लगता है। अगर आप फ्लोरिडा या अमेरिका के किसी दूसरे राज्य में घर खरीदने वाले हैं, जैसे टेक्सास, टेनेसी, एरिजोना, नेवादा या कोलोराडो, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोलोराडो में घरों की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। वहां घरों की संख्या बढ़ रही है और घरों की सप्लाई भी बढ़ रही है और कीमतें भी गिरने लगी हैं, लेकिन बाजार को वाजिब कीमत पर आने में काफी समय लगेगा और घरों का चक्र इसी तरह चलता है। पिछली बार जब मंदी आई थी तो बाजार को ऊपर से नीचे आने में 2007 से 2012 तक 5 साल लग गए थे। फ्लोरिडा में मंदी का पहला या 1.5 साल अभी भी चल रहा है, इसलिए बाजार को आपके लिए वाजिब कीमत पर आने में अभी काफी समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा अजीब है। यहाँ फुटपाथ पर एक मछली है, फुटपाथ पर बस एक मरी हुई मछली। फ्लोरिडा में आपका स्वागत है। और फ्लोरिडा के कुछ इलाके हैं जहाँ मुझे लगता है कि इस साल कीमतें सबसे ज्यादा गिरने वाली हैं, जैसे कि मैं अभी मनाटी काउंटी में हूँ जो टैंपा और सेंट पीटर्सबर्ग के ठीक दक्षिण में है। लेकिन मुझे लगता है कि सेंट पीटर्सबर्ग में भी कीमतें बहुत कम होने वाली हैं। वे पहले ही साल दर साल 4% नीचे आ चुकी हैं। सेंट पेनलिस काउंटी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, स्कोर 30 के निचले स्तर पर पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि इस साल 5 या 6% की और गिरावट आ सकती है। मुझे वास्तव में लगता है कि हम ऑरलैंडो में भी इस साल कीमतों में गिरावट देखना शुरू कर देंगे। ऑरलैंडो के घरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। ऑरलैंडो में बहुत से मकान मालिक घर बेच रहे हैं जिससे कीमतें अब गिरने लगी हैं। खास तौर पर ऑरलैंडो में निवेशकों ने उस बाजार से पूरी तरह किनारा कर लिया है। ऑरलैंडो में निवेशकों की घर खरीदने की मांग अपने चरम से 70% कम हो गई है। इस बारे में सब लोग सोचिए, ऑरलैंडो में निवेशकों की घर खरीदने की मांग में 70% की गिरावट आई है। बाजार के लिए इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है कि हम अभी जो देख रहे हैं, ज्यादा इन्वेंट्री, बिक्री के लिए ज्यादा घर, गिरती कीमतें। मुझे ये भी लगता है कि हम मियामी में इस साल कीमतों में गिरावट देखना शुरू कर देंगे। आप दक्षिण पूर्व फ्लोरिडा में देख सकते हैं, पाम बीच और ब्रोवर्ड में कीमतें गिरनी शुरू हो गई हैं। मियामी डेड में अभी तक कीमतें कम नहीं हुई हैं, लेकिन वे जल्द ही घटेंगी क्योंकि मियामी डेड में इन्वेंट्री बहुत बढ़ रही है। हालांकि मियामी डेड अभी भी फ्लोरिडा में किसी भी बड़ी काउंटी की तुलना में सबसे अच्छा स्कोर करने वाला काउंटी है। इसका स्कोर अभी भी 40 के मध्य में है। तो स्कोर पर 40 के मध्य में कीमतों में थोड़ी गिरावट है, लेकिन हम इस साल मियामी में पूरी तरह से गिरावट नहीं देखने जा रहे हैं। ऐसा 2026 में हो सकता है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये समझना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कीमतें कहाँ गिरने वाली हैं, जैसे कि वे सबसे अधिक कहाँ गिरने वाली हैं, तो आपको वास्तव में 3 संकेतकों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है इन्वेंट्री, लंबी अवधि के मानदंड की तुलना में कितने घर बाजार में हैं। दूसरा है कीमतों में कटौती, बाजार में कीमतों में कटौती की दर लंबे समय के सामान्य से कितनी है। तीसरा, बाजार में रहने के दिन, मकान कितने समय तक बंद रहते हैं। क्योंकि जब आपको ये 3 डेटा पॉइंट पता होते हैं तो आपको बाजार की दिशा के बारे में जानने के लिए जरूरी हर चीज पता होती है। अगर बिक्री के लिए बहुत सारे घर हैं, अगर बहुत सारे विक्रेता कीमतों में कटौती कर रहे हैं, और अगर घर बाजार में सामान्य से बहुत लंबे समय तक बंद रहते हैं, तो इसका मतलब है कि कीमतों में गिरावट आने वाली है। इसके विपरीत, अगर इन्वेंट्री लंबी अवधि के औसत से कम है, अगर कीमतों में कटौती लंबी अवधि के औसत से कम है, और बाजार में रहने के दिन लंबी अवधि के औसत से कम है, जैसा कि हम न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क में देख रहे हैं जहां बाजार अभी भी तंग हैं, तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। इसलिए वास्तव में अपने बाजार की भविष्य की दिशा को समझने की शक्ति आपके हाथ में है। ये वास्तव में अनुमान लगाने का खेल नहीं है, ये बहुत ही सरल है। और बहुत जल्द हम एक रूपांतरण चार्ट तैयार करने जा रहे हैं ताकि आप लोग देख सके कि भविष्य में कीमतों के पूर्वानुमान के संदर्भ में ये स्कोर वास्तविक प्रतिशत में कैसे परिवर्तित होता है। 50 का स्कोर लगभग 1 से 2% की वृद्धि होगी, तो 50 औसत 1 से 2% की वृद्धि है। यदि हम 50 से ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि अगले वर्ष कीमतें बढ़ रही हैं। यदि हम 50 से नीचे हैं तो इसका मतलब है कि कीमतें गिर रही हैं। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ये समझना चाहते हैं कि कीमतें कहाँ गिरने वाली हैं और कहाँ सबसे अधिक गिरने वाली हैं, या शायद कहाँ वे अभी भी बढ़ने वाली हैं, तो www.reventure.app पर जाएं और एक प्रीमियम प्लान के लिए साइन अप करें ताकि आप हमारे होम प्राइस फोरकास्ट को तक पहुंच सकें। प्रीमियम प्लान $39 प्रति माह या $399 प्रति वर्ष 15% छूट के साथ है। और आप अमेरिका के सभी अलग अलग बाजारों के लिए उस मूल्य पूर्वानुमान को तक पहुंच सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आपके शहर और जिप कोड के क्षेत्रों के लिए। तो आप मानचित्र पर देख सकते हैं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां कीमतों में सबसे अधिक गिरावट आने वाली है। स्कोर की तुलना दीर्घकालिक औसत से कैसे की जाती है? तो अभी www.reventure.app पर जाएं, एक प्रीमियम प्लान के लिए साइन अप करें ताकि आप अपने जिप कोड तक उस मूल्य पूर्वानुमान तक पहुंच सके और समझ सके कि 2025 और 2026 में आपके बाजार का भविष्य कहां जा रहा है।